नमस्कार और स्वागत है।
नमस्कार।
आज हम भाषा की दुनिया के कुछ बहुत ही काम के छोटे मगर असरदार शब्दों पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास है अध्याय 3, जिसका टाइटल है द वर्ल्ड ऑफ लिटिल रिप्लेसर्स, मतलब कि प्रोनाउंस। और हमारा इरादा है कि इसमें जो भी जानकारी है उसे थोड़ा खंगालें, समझें कि ये क्यों इतने जरूरी हैं। तो आज की चर्चा रहेगी प्रोनाउंस पर। क्या होते हैं ये, क्यों जरूरी हैं हमारी बातचीत या लिखाई में, और इस चैप्टर में इनके कौन कौन से टाइप बताए गए हैं। सोचिए, ये ना हो तो हमें बार बार नाम लेने पड़ें, कितना अजीब लगेगा। चैप्टर की शुरू में ही एक अच्छा सा उदाहरण है। रिया इज फीडिंग बर्ड्स, शी स्माइल्स, शी गिव्स देम फूड, दे ईट इट। देखा, शी, देम, दे, इनके आने से बात कितनी आसान और नेचुरल हो गई, वरना रिया, बर्ड्स, फूड बार बार बोलना पड़ता।
बिल्कुल सही कहा आपने। ये छोटे रिप्लेसर्स न सिर्फ भाषा को छोटा करते हैं, बल्कि उसमें एक फ्लो, एक रवानी लाते हैं। ये नाउन्स के लिए कह सकते हैं बड़े कुशल सहायक हैं। चैप्टर के जो लर्निंग आउटकम्स है वो भी यही कहते हैं, प्रोनाउंस को पहचानो, उनके प्रकार समझो, और सबसे जरूरी, नाउन्स के साथ उनका सही तालमेल, जिसे वो कहते हैं प्रोनाउन एंटीसीडेंट अग्रीमेंट, वो बिठाना सीखो ताकि बात एकदम साफ हो।
हाँ, ये दोहराव से बचने वाली बात तो बहुत ही काम की है। चलिए थोड़ा और अंदर चलते हैं। चैप्टर के हिसाब से प्रोनाउन ठीक है क्या? वो मीवी कैरेक्टर भी कुछ कहता है ना कि ये कूद कर नाउन की जगह ले लेते हैं।
हाँ बिल्कुल। देखिए, इनका बेसिक काम ही है नाउन को सब्स्टिट्यूट करना, मतलब उसकी जगह लेना। जब हम किसी व्यक्ति, चीज या जगह का जिक्र एक बार कर देते हैं तो बार बार उसी नाउन को दोहराने से अच्छा है कि हम प्रोनाउन यूज कर लें। इससे भाषा में स्मूदनेस आती है और सुनने वाले को भी आसानी होती है। जैसे मान लीजिए, किताब मेज पर है, वो भारी है। अब यहाँ वो ने किताब की जगह ले ली, भाषा ज्यादा एफिशिएंट हो गई।
समझ गई, तो मतलब एफिशिएंसी और फ्लो इनके लिए ये जरूरी हैं। अच्छा, अब ये बेसिक बात तो समझ आ गई, तो फिर इनके जो अलग अलग रूप हैं उन पर आते हैं। चैप्टर में बताए गए हैं कई सारे, पृष्ठ 21 पर एक टेबल भी है शायद। शुरुआत करते हैं सबसे आम वाले से, पर्सनल प्रोनाउंस।
हाँ, पर्सनल प्रोनाउंस तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये किसी खास व्यक्ति, जगह या चीज के लिए आते हैं। चैप्टर में है ना वो लिस्ट, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। ये सब्जेक्टिव भी हो सकते हैं, जैसे ही इज रनिंग, या ऑब्जेक्टिव, जैसे गिव द बुक टू हिम। इनका सीधा काम है किसी स्पेसिफिक नाउन को हटाकर उसकी जगह लेना।
अच्छा, तो ये सीधे सीधे नाम की जगह आ जाते हैं, जैसे रिया की जगह शी, राहुल की जगह ही। सिंपल, ठीक है। अब अगला टाइप है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। ये थोड़े अलग से लगते हैं, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, और इनके प्लूरल्स भी। इनका क्या काम है?
देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस तब आते हैं जब वाक्य का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही हो, मतलब जब काम करने वाला खुद पर ही वो काम कर रहा हो। याद है चैप्टर की प्रैक्टिस एक्टिविटी का उदाहरण, शी गेव हर सेल्फ अ पैट ऑन द बैक। यहाँ शी ने किसको शाबाशी दी?
खुद को,
यानी हरसेल्फ को। तो ये एक्शन को वापस सब्जेक्ट की तरफ रिफ्लेक्ट करते हैं, ये जोर देते हैं कि काम सब्जेक्ट ने खुद पर किया।
ओह, तो ये खुद को या स्वयं को वाला सेंस देते हैं, जैसे मैंने खुद को चोट पहुंचा ली, या उन्होंने खुद ही पार्टी ऑर्गेनाइज की। इंटरेस्टिंग। चलिए अब डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउंस, दिस, दैट, दीज, दोज, ये तो काफी सुने हैं।
हाँ, डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउंस का काम है किसी चीज या चीजों की तरफ इशारा करना, पॉइंट आउट करना। पृष्ठ 17 पर उदाहरण थे ना, दिस इज माई पेंसिल, मतलब पास की एक चीज। दीज आर स्वीट मैंगोज, मतलब पास की कई चीजें। इसमें दूरी और नंबर दोनों का खेल है। दिस और दीज पास के लिए, दैट और दोज दूर के लिए, और दिस दैट सिंगुलर, दीज दोज प्लूरल। ये चीजों को पहचानने में मदद करते हैं बातचीत में।
बिल्कुल, जैसे हम कहते हैं ये वाली नहीं वो वाली चाहिए, कितना काम आता है। अच्छा, अब आते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउंस पर। नाम से ही लग रहा है, सवाल पूछने वाले, हु, हुम, हुज, व्हाट, विच।
एकदम सही, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस सवाल पूछने के काम आते हैं, खासकर जब हमें किसी व्यक्ति, चीज या जानकारी के बारे में पता करना हो जो हमें मालूम नहीं है। पृष्ठ 18 के उदाहरण थे हु इज नॉकिंग, कौन खटखटा रहा है, मतलब किसी व्यक्ति के बारे में पूछ रहे हैं। व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, जानकारी मांग रहे हैं। विच का इस्तेमाल अक्सर चॉइसेस में से पूछने के लिए होता है, विच कलर डू यू लाइक। ये सवाल बनाने में, मतलब क्वेश्चन फॉर्मेशन में बहुत जरूरी है।
हाँ, इनके बिना सवाल कैसे पूछेंगे। ठीक है, अगला ग्रुप है relative pronouns ka, who, whom, whose, which, that. ये दिखते तो interrogative जैसे हैं, पर काम अलग है शायद.
हाँ, दिखने में थोड़े एक जैसे हैं, पर काम बिल्कुल अलग है. Relative pronouns के दो काम हैं. एक तो ये वाक्य के एक हिस्से को दूसरे से जोड़ते हैं, और दूसरा ये उस नाउन के बारे में बताते हैं जिसका जिक्र पहले हुआ है, जिसे एंटीसीडेंट कहते हैं. पृष्ठ 18 का उदाहरण याद कीजिए, द बॉय हु वन द रेस इज माई फ्रेंड. यहाँ हु दो काम कर रहा है, एक तो द बॉय के बारे में बता रहा है, और दूसरा वन द रेस वाले हिस्से को मेन वाक्य से जोड़ रहा है. चैप्टर में इन्हें सही कहा गया है, कनेक्टिंग वर्ड्स. ये वाक्य में एक्स्ट्रा जानकारी जोड़ने में मदद करते हैं.
अच्छा, तो ये जोड़ने वाले पुल जैसे हैं जो जानकारी भी जोड़ते हैं. जैसे द पेन दैट यू लॉस्ट वॉज रेड, इसमें दैट पेन के बारे में बता रहा है और जोड़ रहा है कि कौन सा पेन लाल था. समझ गई. और अब लिस्ट में आखिरी है इनडेफिनिट प्रोनाउंस, जैसे समवन, एनीवन, एवरीबॉडी, नोबॉडी, ईच, फ्यू, मैनी, ऑल. इनका क्या चक्कर है?
इनडेफिनिट प्रोनाउंस तब यूज होते हैं जब हम किसी व्यक्ति या चीज की बात तो कर रहे हैं, पर वो पक्का नहीं है कि कौन या क्या, मतलब स्पेसिफिक नहीं है. नाम ही है ना इनडेफिनिट, यानी अनिश्चित. पृष्ठ 18 के उदाहरण, समवन इज एट द डोर, कोई है दरवाजे पर, हमें नहीं पता कौन. ऑल आर वेलकम, सभी का स्वागत है, कोई खास ग्रुप नहीं. ग्रामर बाइट में भी यही लिखा है कि ये सामान्य या अनिश्चित होते हैं. ये तब काम आते हैं जब पता ना हो किसकी बात हो रही है, या हम जानबूझकर किसी का नाम ना लेना चाहें.
ये कोई, किसी, सब, कुछ वाले शब्द जो हम खूब इस्तेमाल करते हैं जब पक्का पता नहीं होता. तो ये हो गए मोटे तौर पर प्रोनाउंस के प्रकार जो चैप्टर में है. ये सब जानना तो ठीक है, पर मुझे लगता है असली मुश्किल आती होगी इनके सही इस्तेमाल में, खासकर जब वाक्य थोड़े लंबे या ट्रिकी हों.
हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं. और यहीं पर चैप्टर का अगला इम्पोर्टेंट हिस्सा आता है, प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट. ये पृष्ठ 19 पर है. सुनने में थोड़ा टेक्निकल जरूर लगता है, पर साफ और सही भाषा के लिए रूल बहुत जरूरी है.
हाँ, ये एंटीसीडेंट शब्द थोड़ा डराता है, पर इसका मतलब सिर्फ वो नाउन है जिसकी जगह प्रोनाउन ले रहा है ना? और अग्रीमेंट मतलब तालमेल दोनों में.
बिल्कुल, तालमेल दो चीजों में होना चाहिए, नंबर यानी वचन, सिंगुलर या प्लूरल, और जेंडर यानी लिंग, मैस्कुलिन, फेमिनिन या न्यूटर. अगर एंटीसीडेंट सिंगुलर है तो प्रोनाउन भी सिंगुलर, अगर वो प्लूरल है तो प्रोनाउन भी प्लूरल. ऐसे ही जेंडर का मेल भी जरूरी है. चैप्टर के उदाहरण इसे अच्छे से समझाते हैं. रिया इज स्मार्ट, शी स्टडीज वेल. यहां रिया सिंगुलर फेमिनिन है तो शी आया. द बॉयज आर रनिंग, दे आर फास्ट. यहां बॉयज प्लूरल हैं तो दे आया. द डॉग इज बार्किंग, इट इज लाउड. यहां डॉग सिंगुलर और न्यूटर, जानवरों के लिए अक्सर इट आता है तो इट आया.
ये तो सीधा लग रहा है, पर गड़बड़ कहां होती है? चैप्टर में एक आम गलती बताई है, एवरी स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग देयर पेंसिल. ये गलत क्यों है?
हाँ, ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है. यहां एंटीसीडेंट है एवरी स्टूडेंट, शब्द एवरी इसे सिंगुलर बनाता है, हर एक छात्र. तो इसके साथ प्लूरल प्रोनाउन देयर लगाना ग्रामर के हिसाब से ठीक नहीं माना जाता. चैप्टर के हिसाब से सही वाक्य होगा, एवरी स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग हिज और हर पेंसिल. हाँ, ये थोड़ा लंबा लगता है, पर ज्यादा करेक्ट है. आजकल लोग क्लैरिटी के लिए कभी कभी सिंगुलर दे भी यूज करते हैं, पर पारंपरिक ग्रामर में, खासकर लिखने में, हिज और हर को प्रेफर करते हैं. चैप्टर की टिप भी यही कहती है कि एवरी वन, सम वन, एनी बडी जैसे सिंगुलर इनडेफिनिट प्रोनाउंस के साथ हिज और हर लगाएं.
अच्छा, तो एवरी, ईच, समवन, नोबडी जैसे शब्द असल में सिंगुलर माने जाते हैं, तो प्रोनाउन भी सिंगुलर ही रखना है, ये ध्यान रखना पड़ेगा.
अगर ये अग्रीमेंट बिगड़ जाए तो मतलब क्या फर्क पड़ता है? अगर अग्रीमेंट ठीक ना हो तो वाक्य में कन्फ्यूजन हो सकता है. पढ़ने वाले को या सुनने वाले को ये समझने में दिक्कत हो सकती है कि प्रोनाउन किसकी बात कर रहा है.
Yes.
इससे कम्युनिकेशन अनक्लियर हो जाता है.
सही.
कभी कभी तो मतलब ही बदल सकता है. सोचिए अगर किसी जरूरी डॉक्यूमेंट या इंस्ट्रक्शन में ऐसी गलती हो. इसीलिए क्लैरिटी और एक्यूरेसी के लिए प्रोनाउन एंटीसीडेंट अग्रीमेंट बहुत जरूरी है.
बिल्कुल, स्पष्टता तो बहुत जरूरी है किसी भी कम्युनिकेशन में.
अच्छा, तो ये सारे नियम और प्रकार समझने के बाद चैप्टर में प्रैक्टिस पर भी जोर है. पृष्ठ 19-20 पर, सिर्फ रूल जानना काफी नहीं, उन्हें यूज करना आना चाहिए. हाँ, प्रैक्टिस एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट है. चैप्टर में प्रोनाउन के टाइप पहचानने, खाली जगह भरने और प्रोनाउंस लगाकर वाक्यों को दोबारा लिखने जैसे अभ्यास हैं। ये एक्टिविटीज सिर्फ रटने के बजाय उन्हें असल में इस्तेमाल करने में मदद करती हैं। जैसे वो री राइट विथ प्रोनाउंस वाला उदाहरण था, द एलिफेंट इज ह्यूज, द एलिफेंट इज ईटिंग बनानाज। इसे बदलकर कर दिया, द एलिफेंट इज ह्यूज, इट इज ईटिंग बनानाज। ये दिखाता है कि कैसे प्रोनाउन दोहराव खत्म करके वाक्य को बेहतर बनाता है।
और वो कुछ मजेदार एक्टिविटीज भी थी, प्रोनाउन बुक मार्क्स बनाना या हु एम आई गेम खेलना। ये सीखने को थोड़ा लाइट और यादगार बनाने के अच्छे तरीके लगते हैं।
निश्चित रूप से, जब हम किसी कॉन्सेप्ट के साथ थोड़ा खेलते हैं या उसे क्रिएटिव तरीके से यूज करते हैं तो वो ज्यादा अच्छी तरह समझ आता है और याद भी रहता है।
बुक मार्क्स से प्रकार याद रहेंगे और हु एम आई गेम से प्रोनाउंस को सही कॉन्टेक्स्ट में यूज करने की प्रैक्टिस होगी। ये सब लर्निंग आउटकम्स पाने में मदद करते हैं, सिर्फ जानना नहीं बल्कि सही से इस्तेमाल करना सीखना।
तो कुल मिलाकर इस चैप्टर से प्रोनाउंस के बारे में हमने क्या समझा? पहली बात तो ये कि ये नाउंस के बड़े जरूरी साथी हैं जो भाषा को दोहराव से बचाकर आसान और फ्लो वाला बनाते हैं।
हाँ, और हमने इनके मुख्य प्रकार समझे, पर्सनल, रिफ्लेक्सिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंटरोगेटिव, रिलेटिव और इनडेफिनेट। हर एक का अपना खास काम है।
वो पृष्ठ 21 की असेसमेंट एंड रिव्यू टेबल इन्हें याद रखने के लिए अच्छी है।
और शायद सबसे जरूरी सबक है प्रोनाउन एंटीसिडेंट अग्रीमेंट का। ये पक्का करना कि प्रोनाउन अपने नाउन मतलब एंटीसिडेंट से नंबर और जेंडर में मेल खाता हो, ताकि बात एकदम साफ और सटीक रहे। इसमें चूक से कन्फ्यूजन हो सकता है।
बिल्कुल, ये चैप्टर प्रोनाउंस की दुनिया में एक अच्छी सॉलिड बुनियाद रखता है। ये दिखाता है कि ग्रामर के नियम सिर्फ नियम नहीं है बल्कि असरदार तरीके से बात करने के औजार हैं।
एक बात जो मुझे खास तौर पर समझ आई वो ये कि ये छोटे छोटे शब्द जिन्हें हम शायद उतना ध्यान नहीं देते, असल में हमारी भाषा की क्लैरिटी, उसकी कंसाइजनेस और यहाँ तक कि स्टाइल पर कितना बड़ा असर डालते हैं। इनका सही इस्तेमाल वाकई बहुत जरूरी है।
एकदम सही कहा। और इसी से जुड़ा एक सोचने वाला सवाल मन में आता है जो चैप्टर की बातों पर ही बेस्ड है। जरा सोचिए कि किसी खास प्रोनाउन का चुनाव, जैसे किसी का नाम न लेकर समवन कहना या किसी व्यक्ति के लिए ही शी की जगह आजकल दे का इस्तेमाल करना, ये चीजें वाक्य के टोन को, उसके मतलब को या वो कितना फॉर्मल या इनफॉर्मल है इसको कैसे बदल सकती हैं। मतलब लेखक या बोलने वाले कैसे सोच समझकर प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं ताकि वे सिर्फ जानकारी ना दें बल्कि एक खास नजरिया या लहजा भी पेश कर सकें।
वाह, ये वाकई सोचने वाली बात है कि कैसे एक छोटा सा शब्द चुनना पूरे मैसेज के फील को बदल सकता है। प्रोनाउंस सिर्फ ग्रामर नहीं बल्कि कम्युनिकेशन की कला का भी हिस्सा है। इसी विचार के साथ प्रोनाउंस पर आधारित इस चैप्टर की हमारी ये चर्चा यहीं खत्म होती है। उम्मीद है ये बातचीत जानकारी भरी और काम की रही होगी।